रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, कर सिंह सी दहाड़, साथ तेरे वो कालों का काल, शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल, शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल।
आओ मिलके संकल्प करें, हमें पावन बनना है, वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें तपस्वी बनना है, पर्यावरण में फैले विकारों को मिटाना है। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीजगी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीजगी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है, हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें योगी बनना है, संसार में फैली अशुद्धि को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये धरती घर सभी का है, आत्माओं का ये ठिकाना है, खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है, खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पवित्र बनना है, सृष्टि में फैली नापाकी को अब तो मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये मुरली अमृत जीवन का है, आत्माओं का ये खजाना है, बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है, बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें क्रांति लानी है, वसुंधरा में फैला अंधकार मिटाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है।
ओम शांति। प्राण नाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल लाल, हे समर्थ अगम्य पूर्ण माया मोहधार, हे गोविंद, हे गोपाल, अंधकूप महाभयानक, नानक पार उतार, हे गोविंद, हे गोपाल। अंधकूप, ये अंधकार बहुत भयानक है, नानक पार उतार। अध्यात्म की यात्रा अज्ञात की यात्रा है, छलांग लगाने की यात्रा, अकेले की, और इसमें क्या मिलेगा, कौन मिलेगा, कौन सी परिस्थिति आएगी, पता नहीं। अंधकूप महाभयान, नानक पार उतार। हे गोविंद, हे गोपाल। केवल एक ही बात आधार है और वो है समर्पण, संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण निश्चय। विजय में निश्चय और मूल्य में बाबा ने कहा है इन आठ बातों को जानने वाला, इन आठ बातों के महत्व को जानने वाला सबसे पहला स्वयं के महत्व को जानने वाला, कि हम इस संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन अनेकों के लिए प्रेरणा है। दूसरा, स्वयं की शक्तियों को जानना। तीसरा, दूसरे पुरुषार्थियों को के पुरुषार्थ को नंबरवार जानना। चौथा, ज्ञान के दान के महत्व को जानना, गुण के दान के महत्व को जानना, स्वयं के समय के दान के महत्व को जानना, कर्मों को जानना, और लास्ट और आठवां, स्वभाव संस्कार को जानना। इन आठों को जानने वाला एक प्रकृति बाहर है और एक प्रकृति भीतर है। एक जगत बाहर है, एक जगत भीतर। मैक्रोकॉसम, माइक्रोकॉसम, एक कॉस्मोस, एक सृष्टि बाहर है और एक सृष्टि भीतर है। भीतर की सृष्टि की स्टडी, स्वयं को जानना। दूसरा, स्वयं के महत्व को जानना, जो दूसरी आत्माएं हैं उनको भी जानना, उनके पुरुषार्थ की रूपरेखा को जानना। चौथा, गुण के दान को जानना, ज्ञान धन के दान को जानना, स्वयं के समय के दान को जानना, कर्मों को जानना, और स्वभाव संस्कारों को जानना। इतनी चीजों को जानना है तब कहा जाएगा उसे बाप समान। इस मुरली में बाबा ने तीन कैटेगरी बताई है, एक वो आत्मा है जो समान है, एक वो जो समीप है, और एक वो जो सामने है। बाबा को क्लासिफिकेशंस बहुत पसंद है, तीन प्रकार, चार प्रकार, दो प्रकार, क्योंकि उसे दिखाई दे रहा है कि सभी समान नहीं है, सब अलग अलग। जो समान है वो जब चाहे, जहां चाहे, एक सेकंड में खुद को वो कर सकते हैं, पर जो समीप है उनको कुछ घड़ियां लग जाती है, और जो सामने है उनको घंटे या कुछ दिन लग जाते हैं। तो हर मुरली एक वेकअप कॉल है, वेकअप कॉल एक अलार्म है, जो मिलिट्री होते हैं कैंप में जाते हैं सुबह सुबह, क्या बजता है, वेकअप कॉल, जागो, उठो, सोने का वक्त नहीं। अध्यात्म अध्यात्म अर्थात सतत जागरण, दूसरी इसी मुरली में बाबा ने कहा है। अटेंशन, होशियार, गांव में लोग जब बैल खरीदने जाते हैं तो बैल अच्छा है कि नहीं वो जानने के लिए एक काम करते हैं। कौन सा? उसकी पूंछ को पकड़ते हैं। जो सुस्त बैल होते हैं, ठंडे बैल होते हैं, वो जैसे ही पूंछ को हाथ लगाया पूरे शरीर को ढीला छोड़कर नीचे लेट जाते हैं। ऐसे बैलों को नहीं खरीदना चाहिए। पर जो फुर्तीले बैल होते हैं, शक्तिशाली बैल होते, जैसे उनके पूंछ को हाथ लगाया वो उछलते हैं, चिढ़ते हैं, लात मारते हैं, उनके अंदर जोश होते हैं, तब वो समझता है इसको खरीदना चाहिए। और जो ढीले होते हैं उनको नहीं खरीदना चाहिए, वो सुस्त है। उसकी उपमा अध्यात्म से की जाती है। यहां पर भी दो प्रकार के बैल है, एक सुस्त एक चुस्त। सुस्त पुरुषार्थी, जैसे चूड़ा होता है दूध में भिगोया हुआ, गर्म नरम और ठंडा, वो है सुस्त पुरुषार्थी। और जो चुस्त होते हैं, फुर्तीले होते हैं, तो वैसी फुर्ती, वैसी पावर, वैसा जोश, वैसा अटेंशन, ऐसे होशियार बनना है। ये मार्ग सतत स्वयं को जगाने का मार्ग है। ये दूसरी मुरली है, उसमें बाबा ने वार्निंग दी है। एक एक सेकंड, क्योंकि आंखों से, कानों से, इंद्रियों से हम जो कुछ ग्रहण कर रहे हैं वो चित्त पर एक छाप छोड़ रहा है। इसलिए क्या हम कर रहे हैं? सबके सामने नहीं, जब अकेले में है तब, वो हमारा चरित्र है। तो इस मुरली में बाबा ने 8 निशानियां गिनाई है। बाप समान आत्माओं की सबसे पहली निशानी, 1 सेकंड में वाणी से परे, सी सी सी, जैसे वाणी में आने के लिए चांस ढूंढते रहते हैं, जैसे बोलने के लिए चांस, जैसे उत्सुकता क्यूरियोसिटी और तड़प होती है क्रेविंग बोलने के लिए, स्पीच के लिए, क्या क्या है चांस कि हमको चांस मिल जाए, तड़प क्रेविंग और उत्कंठा क्यूरियोसिटी, वैसे क्या वाणी से परे जाने के लिए, ये तीनों है कि कब चांस मिले और चुप हो जाऊं, कब चांस मिले उत्कंठा उत्सुकता वाणी से परे जाने की, और तड़प आवाज से वैराग्य, मौन योग। राजयोग का एक नाम क्या है? मौन योग, मौन साधना है। इसमें वाणी का कोई काम नहीं, चित्रों का कोई काम नहीं, मूर्तियों का कोई काम नहीं, गीतों का कोई काम नहीं, लाइट का कोई काम नहीं। यात्रा तो भीतर की है। तो सबसे पहली निशानी, एक सेकंड में क्या करना, वाणी से परे, आवाज से परे, साउंड से साउंडलेस, साउंडलेस वर्ल्ड में प्रवेश, जहां शब्द नहीं, जहां शोर नहीं। तो उस वाणी से परे की दुनिया और इस वाणी की दुनिया के बीच एक और चीज है, वो है प्रकृति। उस प्रकृति में जाओ। ये प्रकृति की जो आवाजें हैं, ये आवाजें मनुष्यों की आवाजें से परे ले जाएगी। प्रकृति को निहारना, प्रकृति को देखना, प्रकृति को समझना, प्रकृति के मौन के साथ तादात्म्य मिल हो जाना, एक हो जाना, तो धीरे धीरे इन आवाजों से वैराग आएगा। तो बाप समान आत्माओं की पहली निशानी, एक सेकंड, चलो एक सेकंड नहीं, कुछ और समय, परंतु बीच बीच में इंटरमिटेंट साइलेंस, मौन का अभ्यास करते रहना है। आवश्यकता है तो बोलो, आवश्यकता पूरी हुई, चुप। दूसरा, तूफान में अचल, अडोल, शांत। परिस्थितियां है, शांत में शांत रहना, इसमें क्या है? अचल अडोल है, सब ठीक चल रहा है, परंतु परिस्थितियां विकराल है। बड़ी परिस्थितियां, बड़े पेपर, उसमें अचल है, उसमें अडोल है, उसमें अंगत समान है, उसमें शांत है, प्रभाव से मुक्त, मुक्त प्रभाव से परे, नो रिएक्शन। भीतर शांत, ऊपर से ये दिखा भी रहे कि हलचल है, परंतु वो हलचल उसी तरह है जैसे समुद्र के ऊपर की हलचल। भीतर कैसा है वो? प्रशांत। ये दूसरी निशानी। तीसरी निशानी, कई कारण है पर सभी कारणों के बीच निवारण रूप। कारण बहुत है परंतु ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बहुत कारण है। ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, बॉस ठीक नहीं है, साथी ठीक नहीं है, जूनियर ठीक नहीं है, स्थान ठीक नहीं है, काम ठीक नहीं है, कर्म का टाइम ठीक नहीं है, टाइमिंग ठीक नहीं है, मौसम भी ठीक नहीं है, सीनियर्स भी ठीक नहीं है, साथी ठीक नहीं है, जूनियर्स भी ठीक नहीं है, सेवा का रूप ठीक नहीं है, टाइमिंग बिल्कुल अच्छा नहीं है, शरीर भी ठीक नहीं है, और किस्मत पता नहीं क्यों ऐसी है। यह है कारण, 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 पर सभी कारण होते हुए भी भीतर कैसे? निवारण स्वरूप, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। परिस्थिति की परिस्थितियों को गहराई से समझा है, उनके रहस्य को। यह है तीसरी निशानी। चौथी निशानी जो हमने बताई, जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो कर सको, करते हैं, कर भी सकते हैं और करते भी है, जो चाहो। कल भी कहा था, असंभव मुश्किल नहीं, कल सुना था ना, मुश्किल नहीं है उनके लिए कोई भी चीज, डिफिकल्ट नहीं। अगली निशानी, आठ का महत्व। कौन सी आठ बातें? पहला, स्वयं को जानते हैं, स्वयं के महत्व को जानते हैं, एक व्यक्ति खुदकुशी करने निकला, बस अभी जा ही रहा था कि उसे कोई मिला एक योगी, योगी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, कहता है मेरा जीवन व्यर्थ है, कुछ काम का नहीं। वो कहता है ठीक है, अब तुम जा ही रहे हो तो एक काम करो, मुझे अपनी एक आंख दे सकते हो, मैं 5,000 रुपये दूंगा। कहते हैं एक आंख कैसे दू? तो कहते कोई नहीं, दोनों आंख दे दो, 20,000 रुपये दूंगा। ये तो मैं नहीं दे सकता। वो कहता है एक हाथ दे दो, एक काट के, तो मैं नहीं दे सकता। तो वो कहता है तो ये सब कीमत कितनी है फिर तुम्हारी सबका, और तुम क्या करने जाओ, और तुम कहते हो कि मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये तो तुम दे नहीं सकते। फिर स्वयं को जानना, स्वयं के शक्तियों क्या के महत्व को जानना, तीसरा दूसरों के क्या पुरुषार्थ की जो स्टेजेस है, इसलिए हम डिस्टर्ब नहीं होंगे क्योंकि हम जानते हैं हर एक अलग अलग पुरुषार्थ की स्टेज पर है, जो समझ तुम्हारी है वो दूसरों की नहीं है। जैसे तुम देख रहे हो परिस्थितियों को, वो कुछ और रीति से और ढंग से देख रहे हैं। जितनी समझ तुम्हारी परिपक्व है उतनी उनकी अभी है नहीं, या फिर हो सकता है कि तुम ही अज्ञान में हो और वो ज्ञान में हो, और तुम ये समझ रहे हो कि वो अज्ञानी है और वो ये समझ रहे हैं कि हम अज्ञानी हैं। कुछ भी हो सकता है दोनों में से, या तो हम महामूर्ख हैं या वो, या फिर दोनों ही। तो स्वयं को जानना, स्वयं की शक्तियों को जानना, दूसरों के पुरुषार्थ की स्टेज को जानना। बाबा ने कहा है तुम झाड़ की पत्तियों को जानो, जहां रहते हो वो आसपास की जो पत्तियां है, नहीं तो क्या होते रहोगे डिस्टर्ब। हर व्यक्ति एक स्वभाव सिकंजे में फंसा है, कैद है स्वभाव सिकंजे में। इस स्वभाव शिकंजे को तोड़ना इतना सहज काम नहीं है, स्वभाव एक कैद है, ये शिकंजा है एक, जिसमें वो कैद है, आबद्ध है, उसमें गिरफ्तार है वो। और हम सोचते हैं कि उसका स्वभाव बदल जाए, कैसे बदलेगा, वो खुद भी तो नहीं बदल पा रहा है सारे पुरुषार्थ के बाद। इसी मुरली में बाबा ने कहा है कि महारथी भी बाबा से अमृत फैला रूरिहान करते हैं कि अभी तक जो होना चाहिए था वो नहीं है। अगला, ज्ञान के गुण के दान को समझते हैं, ज्ञान धन के दान को समझते हैं, समय के दान को समझते हैं, समय स्वयं के समय का दान। कुछ आत्माओं को क्या चाहिए रहता है, बाकी चीजें नहीं चाहिए, समय चाहिए। अगला, कर्मों को समझना, कौन सा कर्म किया तो क्या मिलता है, ये कर्म किया उसका परिणाम। उस दिन भी हमने देखा था त्रिकालदर्शी स्थिति, वर्षे के अधिकारी आत्माओं की निशानी एकरस, एकाग्र, एकांत, और लास्ट स्वभाव संस्कार। तो इन आठों को समझना। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां बताई है, हद की प्राप्ति के आकर्षण से परे, वो छूता भी नहीं, ऐसे को कहा जाता है वैष्णव। जो वैष्णव होते हैं ना, अगर कोई छू ले उनको तो क्या समझते, पाप, प्रायश्चित करते, पश्चाताप करते। तो हद के प्राप्ति का आकर्षण क्या क्या है, हद की प्राप्ति है, स्तुति हो जाए, भाषण दिया तो कोई तुरंत आके कहे कि बहुत ही अच्छा था, एक कोई चित्र बनाओ तो लोग कहे कि ये किसने बनाया, कोई रंगोली निकालो तो तो कोई पूछे किसने बनाया, भोजन बनाया और हम चुपके से देखते जो खा रहे हैं चार लोग, अभी तो बोले किसने बनाया, पूछे तो सही। प्रशंसा, कल भी सुना था प्रशंसा बड़ापन, दाता, महारथियों की सात निशानियां, दाता, देने वाले नहीं, देने वाले। हद की प्राप्ति है ये, फल कौन सा है ये, कच्चा वाला, कच्चा फल, ज्यादा ही कच्चा फल खा लिया तो क्या होता है पेट में, फिर पेट में बलाऊ। ईट मैच्योर्ड फ्रूट। और पुरुषार्थ की जो भी योजनाएं बनाओ, चाणक्य नीति कहती है, उसे गुप्त रखो, अपने पुरुषार्थ की योजनाओं को गुप्त रखा जाए, भनक तक ना आए, शत्रुओं को भी नहीं और मित्रों को तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी योजनाओं को, अपने षड्यंत्रों को शत्रु पर वार करना है, अत्यंत गोपनीय रखा जाए, क्योंकि उसको सुनाते ही उसमें जो बल है वो कम हो जाता है। इसलिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, क्या रणनीति बनानी है, अपनी कमजोरी पर, अपनी कमजोरी का अपने दुश्मन को पता नहीं चलने देना, और ये सबसे बड़ी गलती है। हम अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर कर देते हैं। गुप्त रखो और गुप्त ही योजना बनाओ कैसे जीता जाए, इनकॉग्निटो प्लॉट्स, इनकॉग्निटो प्लानिंग्स, ये चाणक्य नीति है। तो बाबा ने क्या कहा, हद के जो आकर्षण है, हद की प्राप्ति के आकर्षण, इससे परे ये टच भी ना करे। इतना निस्संग, निरासक्त, इतना निस्संग और इतना निरासक्त रहना है। चीजें आई, चीजें गई, चीजें आ रही है, चीजें जा रही है, सब में प्रवाह है, फ्लो है, नश्वर है, भंगुर है, ट्रांजिटरी, एफिमेरल, अनित्य है। जो रुकने वाली नहीं है उससे क्या मोह। हमें तो उसको ढूंढना है जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो ध्रुव है, कुटस्थ है, स्थिर है, ध्रुव तारा कल कहा था ना, जो अस्थिर है, जो हिल रहा है। एक शिष्य कहता है आश्रम के बाहर एक झंडा लहरा रहा है कि हवा से यह झंडा लहरा रहा है, दूसरा शिष्य कहता है नहीं, ये झंडा लहरा रहा है इसलिए हवा चल रही है, ये झंडा हवा को चलायमान कर रहा है। और दोनों में वाद विवाद होता है, हवा लहरा रही है या झंडा। गुरु आके कहता है ना हवा झंडे को लहरा रही है ना झंडा हवा को लहरा रहा है, तुम्हारा मन लहरा रहा है। ना ये सत्य है ना वो सत्य है। एक व्यक्ति है, उसका पुत्र बीमार पड़ गया, उस पुत्र से बहुत प्यार है, सारे प्रयास करता है, दवा दारू सब कुछ करता है, उसके बाद में भी पुत्र की मृत्यु हो जाती है, पर मृत्यु होने के बाद में भी वो पिता अचल अडोल है। वो दूसरों को सांत्वना देना, कोई नहीं ठीक है, ऐसे होते रहता है, जो आया है वो जाएगा, और दूसरे दिन टाइम पर अपने काम पर भी जाता है, काम से आता भी है, पत्नी को भोजन के लिए कहता है, पत्नी रो रही है, कहते कैसे पिता हो तुम, जरा भी नहीं है तुमको, पुत्र कल ही मरा और आज भोजन भी मांगते हो, ड्यूटी पर भी जाते हो। वो कहता है मैंने कल रात एक स्वप्न देखा जिसमें मैं एक राजा था, मेरे 10 पुत्र थे, और जैसे ही जागा वो पुत्र तो चले गए, मैं किसके लिए रोऊं, ये इधर का एक बेटा मरा या जो जो मेरे 10 पुत्र थे स्वप्न में वो जो चले गए? जैसे ये जो जगत है या ये सत्य है या जो स्वप्न में जो जगत देखा वो सत्य है, जागृति में जो है वो भी मिथ्या है और जो स्वप्न में देखा वो भी मिथ्या है, ये भी और ये भी दोनों ही स्वप्न है, वो भी स्वप्न है तो ये जगत भी स्वप्न है, केवल आत्मा ही सत्य है। ये जो दिखाई दे रहा है एक मुरली है जिसमें बाबा ने यह शब्द प्रयोग किया है, ये संसार स्वप्नव्रत है, एक ही मुरली है बस साकार। बाकी ये वाक्य शास्त्रों में तो कई बार आया है वेदांत में, जगन मिथ्या ये स्वप्न है सारा, ये जो देख रहे हो स्वप्न है। किसके लिए रोए, किसके लिए खुश हुए कि ये मिल गया वो मिल गया या ये चला गया वो चला गया, सब ही क्या है मिथ्या। तो हद के जो भी आकर्षण है इनके लिए क्या रोए, हद की प्राप्ति हो के आकर्षण, आज मिली है कल चली जाएगी, आज आया कल चला जाएगा, लॉटरी लग गई धन मिल गया ये हो गया वो हो गया, आज बहुत सारे लोग हैं प्यार करने वाले, कल सब विदा हो जाएंगे। आज संबंधी है, कल सुना ना संबंध संपर्क सफलता सच्चा स्नेह संपत्ति, ये पांचों ही नश्वर है इस संसार में, जो आया है वो चला जाएगा। कोरोना में सारे कितने चले गए, सोचा था कि किसी ने, सब चले गए पर वो भूल गया वापस शमशानी वैराग्य, मरकट वैराग्य, मरकट अर्थात बंदर, मरकट वैराग्य कहते हैं इसे, बंदर होता है ना वो डब्बे उसमें चने, तो वो डब्बे में हाथ डालता है चने खाने के लिए और हाथ फंस जाता है और वो पकड़ लेता है उसको बंदर पकड़ने वाला। तब उसे बंदर को वैराग आता है, इसके बाद कभी भी हाथ नहीं डालूंगा, बहुत ये तो बहुत निकलता ही नहीं हाथ और बहुत मुश्किल से फिर निकल जाता है, पर थोड़ी देर के बाद फिर चने दिखते हैं, फिर वही। बाइबल में तो इससे भी बड़ा उदाहरण दिया है अलग प्रकार से, प्रसव पीड़ा, कितनी पीड़ा होती है मां को, मन में विचार आता है बस हो गया अभी, परंतु फिर वही फिर वही फिर वही। अगला, 5 तत्वों से बाबा ने कहा ये महीन पुरुषार्थ है, सबसे महीन पुरुषार्थ तो यही है, 5 तत्वों के आकर्षण से परे, 5 तत्वों के आकर्षण से उपराम रहना, टच ना करे। 5 विकार तो ठीक है, इस मुरली में बाबा ने कहा ये जो रावण है ना इसके ये जो 5 है, हम कहते हैं 5 विकार स्त्री के 5 विकार पुरुष के, इसमें चेंज, ये 5 विकार और ये है 5 तत्व, इसको खत्म करो, ये है दशहरा, ये है विजयादशमी, ये है रावण, ये 5 तत्व अर्थात ये शरीर, इस शरीर का आकर्षण, इसको क्या करे, और सबसे पावरफुल इसकी विधि है शरीर निरीक्षण, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, इस शरीर का स्कैनिंग देखते रहना। स्टेप नंबर 1, इस शरीर के भीतर जो गंदगी है उसका चिंतन, बौद्ध लिटरेचर में 32 प्रकार की गंदगी का वर्णन है, कौन कौन सी गंदगी, ऊपर से चालू करो, ये बाल गंदगी, ये आंखों से जो निकलता है गंदगी, नाक से निकलने वाला म्यूकस, ये पायोरिया जब होता है तो दांतों से कैसी दुर्गंध आती है, ये चमड़ी, उसके नीचे टेंडन मसल्स लिगामेंट्स, ये लंग्स, ये लंग्स को बाहर निकाल को देखो, एवरीथिंग मांस के लत, ये है पूरे मसल्स नेल्स, कान से क्या निकलता है मैल, इस गन इश और इसको बुद्धि के तल पर तो सबने समझा है, पर अनुभव कहां किया है? शरीर की नश्वरता का हमने अनुभव किया ही नहीं है। बुद्धि के तल पर तो बहुत अच्छे से समझा, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, शरीर नश्वर है, किसको पता नहीं है। तो द्वापर से हर व्यक्ति जानता है, द्वापर के ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने ब्रह्मचर्य के विषय में किसी धर्म ने नहीं कहा, ऐसा हुआ ही नहीं है। ये मोह माया छोड़ो किसको पता नहीं, जो सबसे ज्यादा डूबा हुआ है वो भी यही कहता है, जो अपने प्रवचन में ये कहता है कि संसार माया है, वो एक एक प्रवचन का कितना लेता है, 1,00,000। बुद्धि के स्तर पर तो सबने समझा है, अनुभव कहां हुआ है? शरीर की नश्वरता का अनुभव। बैठो, अचल अडोल, और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सिर के सिरे से पांव की उंगलियां तक, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। जब तब जब ये अनुभव नहीं हो जाता है कि एक विघटन 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 बींधते जाओ देह को भीतर जाते हुए, पूरा शरीर जब तक परमाणु 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 नहीं दिखाई देता, केवल तरंगे ही तरंगे, उत्पात वह उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ये शरीर का जो भारीपन है, जो दर्द है, ये क्यों है? देहभान, क्योंकि एक मिसिंग लिंक है। हम कहते हैं आत्मा है और मन बुद्धि संस्कार, पर ये जो संस्कार प्रकट होते हैं वो संवेदना के रूप में प्रकट होते हैं, सेंसेशंस। शब्द टकराता है इधर से, शब्द कान से टकराने से विकार उत्पन्न नहीं होता है, देह देह से टकराता है, विकार उत्पन्न नहीं होता है, नाक से गंध टकराता है, विकार उत्पन्न नहीं होता है, जिह्वा से रस टकराता है, उससे वस्तु टकराती है, उससे विकार उत्पन्न नहीं होता है। विकार उत्पन्न होता है दोनों के टकराने से, जो सेंसेशन उत्पन्न होता है वो सेंसेशन किस तरीके का सेंसेशन है, प्लेजेंट है कि अनप्लेजेंट है, सुखद है या सुखद है, तो उससे आसक्ति होती है। बीड़ी तंबाकू दारू लिया, उससे कुछ नहीं होता है, परंतु वो लेने से एक संवेदना एक सेंसेशन उत्पन्न होता है, उससे वो आकर्षण होता है, उसका वो एडिक्शन है। काम विकार किसी स्त्री के या पुरुष के देह का क्या आकर्षण, परंतु वो टकराव से जो संवेदना उठती है वो संवेदना का आकर्षण है। वो अगर दुखद है, सुई चुबाओ, क्या होता है? मना करता है मन, इसके बाद नहीं, भागते उससे। क्यों? आग से क्यों भागते? क्योंकि वो दुखद है, क्योंकि ये चुभ रहा है। ऐसे बैठो 1 घंटा तक बिना हिले डुले, पैर में भारीपन आता है। योगियों को देखो बैठे रहते, क्योंकि उनका शरीर में वो भारीपन खत्म हो गया है, शरीर हल्का हो गया है, और शरीर हल्का होना अर्थात वो उन अवस्था में पहुंचे हुए जहां पर ये सेंसेशंस उनके लिए अनित्य है, इसका कोई प्रभाव नहीं है उनके ऊपर। वो दोनों को ही साक्षी भाव से देखते, हमें सुखद और दुखद। सबसे गहरा सबकॉन्शियस माइंड में जो काम करना है, सबसे बड़ा एक ही विकार है, राग और द्वेष, बस इन्हीं पर काम करना है। और वो होगा अंडरस्टैंडिंग से नहीं, पढ़ने से नहीं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, जब तक पूरा शरीर केवल तरंगे अनुभव हो, बस कुछ है ही नहीं। फिर ऐसा योगी तो 1 घंटा क्या, 10 घंटे भी बैठे रहेगा बिना हिले डुले। अधिष्ठान स्थिर, और जब चाहे उठ जाए फूल की तरह। और कोई अगर उठाने की कोशिश करे तो अंगद का पाव जैसा हो जाएगा, उठा ही नहीं पाएगा योगी को। योगी अपनी इच्छा के बिना उठ नहीं सकता, अगर कोई उसको जबरदस्ती उठाए तो, क्योंकि अलौकिक शक्तियां निर्माण होती होने लगती है धीरे धीरे। तो काम इस पर करना है, कौन सा? 5 तत्वों का आकर्षण। फिर ये जो काम विकार और ये खाने पीने की वस्तु है, ये तो ऐसे ही व्यर्थ लगने लगेगी। कुछ भी चीज यहाँ की प्रभावित नहीं करेगी। खाते हुए भी जैसे व्यास के लिए कहा है ना, वो गोपिया आती है, वो कहता है मुझे बहुत भूख लगी व्यास मुनि, तो गोपिया उसे बहुत खिलाती है, वो भी एकदम पेट भर के खाते डकारे लेने लगता है। और फिर जाने का समय होता तो यमुना पूरी उफान पर है। वो यमुना से कहते हैं, अगर मैंने एक अन्न का एक दाना भी नहीं खाया तो यमुना मुझे रास्ता दे। यमुना रास्ता देती है गोपिया सहित व्यास मुनि बाहर। मुझे ये कैसे किया, क्योंकि भोगते हुए भी अभोक्ता की अवस्था है, मन इतनी ऊंची अवस्था में है कि ये सब चीजों का कोई लेना देना नहीं उनको। तो किस पर काम करना है, ये जो शरीर है, ये जो तत्व है, इसका सबसे गहरा आकर्षण है, सबसे गहरा। हमें जरा सा भी दर्द होता है तो हमें उस दर्द को साक्षी होकर देखने का अभ्यास ही नहीं है। वो फिर भी स्थूल संवेदना, हमें तो सूक्ष्म, पहले शरीर के बाहर की संवेदना है सेंसेशंस, फिर शरीर के भीतर की, फिर भीतर बाहर दोनों, फिर ऊपर नीचे, फिर आगे से बाएं से, शरीर के डेप्थ में उसका टुकड़े 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 विघटत 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 करते करते जब तक वो केवल परमाणु परमाणु अनुभव नहीं होते। ये काम यहां करना है। बाहर की वस्तु ये नहीं खाता वो नहीं खाता, ये नहीं यूज करता वो नहीं यूज करता, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो बहुत ही स्थूल है। हमारे पास क्रिश्चियन सिस्टर्स आती है, वो तो नॉनवेज वगैरह सब खाती है, पर उनका स्वभाव तो हमारे यहाँ के ज्ञानियों से भी अच्छा है, एकदम शांत चित्त स्थिर। ऐसी बहुत सी बात है, एक चीज नहीं है कोई। अगला आठवां रॉयल पुरुषार्थी, इसकी और दूसरी निशानियां सुनी है इसी मुरली में, 10 निशानियां रॉयल पुरुषार्थी आत्मा की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रॉयल पुरुषार्थी आत्मा अर्थात, ये हो गए आठ। पहला, आवाज से परे, तूफान में अचल अडोल, कारण में निवारण स्वरूप, जो चाहे वो कर सकते हैं, आठ के महत्व को जानने वाले, हद की प्राप्ति की आकर्षण, देह के पांच तत्वों की आकर्षण से परे, और रॉयल पुरुषार्थी नहीं, ना ही रॉयल पुरुषार्थियों का संग करने वाले, क्योंकि ये जो रॉयल पुरुषार्थी है वो बाबा ने कहा है दलदल। क्या है ये दलदल? फंस जाओगे उसमें। माया भी अपने मन के तैयार कर रही है, एक है विजय माला, एक है माया की मन के की माला, कौन सा बनना है तुमको? ऐसे तो लोगों के भी संग में नहीं जाओ, वो दलदल है बाबा ने कहा। अगर ये दलदल है और ये रॉयल पुरुषार्थियों के संग में नहीं जाना है तो हम आंख बंद करके अगर आसपास देखें तो सारे वही है, तो कहां जाए? कौन सी बातें हैं रॉयल पुरुषार्थियों में? पहला, जिनका पुरुषार्थ किसके आधार पर है, प्राप्ति या रॉयल्टी के आधार पर है, कोई प्राप्ति या कोई साधन, हमको ये दो हमको वो दो, हमको ये मिलना चाहिए, प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, ताकि VIP आ जाए, तो हर चीज में होगा फिर तो, ये एक गुप्त लोभ है, फिर तो ये भी लोभ ही है कि मैं स्वर्ग में ऊंच पद पाऊं, ये भी बिजनेस ही है, बिजनेस ही हुआ नहीं है तो बाप से प्यार हुआ क्या ये? पर वैसे वो खुद ही सिखाता है, वो अलग बात है, वो टेम्पटेशन मुरली में भी वर्ड भी ये यूज करता है। एक मेडिकल साइंटिस्ट पास्कल बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक कभी हुआ इतिहास में, मेडिकल की दुनिया में, मेडिकल हिस्ट्री अगर पढ़ो 16वीं 17वीं शताब्दी में पास्कल हुआ है। तो उसने कहा है, मेरा एक मित्र था, वो पहले नास्तिक था, उसने कहा मेरा मित्र है वो जुआरी है, मैं उसके साथ जुआ खेलता था और जुआ खेलते खेलते मैं आस्तिक बन गया। कैसे? क्योंकि उससे मैंने सीखा कि कैसे जुआ लगाना है, उससे मैंने सीखा। धर्म में भी तो लोग यही करते हैं, एक दो तो भगवान से कितना मिलेगा, 20 गुना, और नहीं मिला तो ये एक ही तो गया, और मिलता है तो 20 गुना मिलता है। तो मैं भी फिर क्रिश्चियन के लिए, धर्म के लिए कह रहे हो कि मैं भी अभी दाव लगाने में क्या जा रहा है, ये व्यापारी भी तो वही करता है। तो अध्यात्म ये व्यापार नहीं है कि जिसमें लोभ है, नुकसान तो हुआ नहीं, 1 रुपया लगाओ 20 रुपये मिलते, 1 रुपया लगा गया तो गया, 1 ही रुपया गया, और मिले तो 20 रुपये मिले, तो ये व्यापार हुआ ना। पर रियल तो ये रियल अध्यात्म ये नहीं है, पर उसी भगवान ने प्रभु प्रेम पर भी मुरलियां चलाई है। उसी में उसने ये भी कहा है कि ये जो तुम 8 घंटा बोलते हो ना, क्या बाप को 8 बांधते हो क्या, इसमें हद में लाते हो क्या, ये भी कहा है उसने, ये भी मत भूलना। इसलिए रॉयल पुरुषार्थी अर्थात सबसे पहला किस लिए कर रहे हैं, कोई प्राप्ति हो जाए, कुछ मिल जाए, कुछ नाम हो जाए, कोई साधन पर डिपेंडेंट है वो। दूसरा, दूसरी निशानी उनकी रॉयल्टी देनी पड़ती है, उनको देनी पड़ेगी रॉयल्टी धर्मराज। तीसरा, वो चतुर है, चतुर और बहुरूपी, वो चेंज करते हैं खुद को, जैसे सामने वाली है उस अनुसार अपने आप को चेंज करते हैं, वो प्रसार प्रचार हो सकता है उससे, परंतु रियल अध्यात्म ये सब नहीं है। अगला,
और ये आत्माएं कैसी होती,
क्या करती है, रॉयल्टी में रियलिटी मिक्स होती है, इसलिए एकर स्थिति उनकी कभी नहीं हो पाती, मिक्स है वो। अगली निशानी इन आत्माओं की अप एंड डाउन, उनका खेल कौन सा है, अप डाउन, उनकी स्थिति कभी ऊपर कभी नीचे, जीरो में भी हीरो, अप डाउन होती रहती है। एक ही दिन में कितने मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं, सुबह बहुत अच्छा मूड रहता है, दोपहर में जाओ, दोपहर में नहीं जाना चाहिए, शाम को तो बिल्कुल ही नहीं, सुबह सुबह अच्छा मूड होता है, मूड चेंज होता है परिस्थितियों के साथ। इस पर डिपेंड करता है कि आपसे मिलने से पहले उनसे कौन मिला था तो अप डाउन मूड, अप डाउन खेल कौन सा करते हैं, वो अप एंड डाउन का खेल। उनके कर्तव्य क्या है, उनका दूसरों को भयभीत कराते हैं। ये एक बहुत वाक्य जो कहा है ना बाबा ने, ये बहुत वही और बहुत सूक्ष्म वाक्य है। क्या कहा, अपने द्वारा दूसरों को भयभीत करने से पहले एक वाक्य है, अल्पकाल के मायावी निर्भय रूप। दूर से लगता है ये बहुत ही निर्भय है, दूर से लगता है ये किसी से डरते नहीं है, परंतु वो कर क्या रहे, दूसरों की निंदा, दूसरों पर कमेंट्स, वो निर्भय है ही नहीं एक्चुअली, वो अल्पकाल का मायावी निर्भय रूप है, दूसरों को डराते हैं, दिखावटी है वो, अंदर से ऐसी आत्माएं भयभीत है, क्योंकि ये पुरुषार्थ है ही नहीं, ये तो सीधा श्रीमत के विरुद्ध है। बाबा ने कहा हमारे मुख से एक शब्द भी किसी आत्मा के खिलाफ निकल रहा है और किसी आत्मा को हम हर्ट कर रहे हैं, ये हिंसा है, पाप है, और यहां दिखाई दे रहा है ये तो कर रहे, तो ये क्या है, अल्पकाल का क्या, माया का निर्भय रूप, प्रकृति के या विकारों के वश अल्पकाल के मायावी निर्भय रूप में रहते और दूसरों के, और इनका स्लोगन क्या है, ये कर करूंगा और ये वह कर लूंगा। तो बाबा ने क्या, ऐसे रॉयल पुरुषार्थी कभी नहीं बनना, ना ही उनका संग करना, और उनको एक वरदान प्राप्त है माया से। वो कौन सा वरदान है, वरदान माया से प्राप्त, उन वरदान की एक विशेषता है उनमें, कौन सी, माया के वश होने वाली जो आत्माएं हैं, अभी ये आत्मा यहां है रॉयल्टी वाली, और जो दूसरी आत्मा है जो माया के वश होने वाली है, और पुरुषार्थी बनने वाली जो आत्माएं हैं दूसरी और सेकंड कैटेगरी को, स्वयं के संग में लाकर प्रभावित करने की विशेषता। किस द्वारा प्राप्त है ये वरदान, माया द्वारा प्राप्त है। तो माया ने कौन सा वरदान दिया ऐसी आत्माओं को, कि तुम जो पुरुषार्थी आत्मा है उनको प्रभावित करना, या दूसरी कौन सी आत्मा है, और दूसरी कौन सी आत्मा है, पुरुषार्थी और दूसरा माया के वश होने वाली जो आत्मा है, ऑलरेडी जो कमजोर हो गई है माया के वश, उनको और ज्यादा प्रभावित कर सकती है आत्मा। इन दो आत्माओं को प्रभावित करने की विशेषता का वरदान किसने दिया है, माया ने दिया है। किनको दिया है, रॉयल्टी आत्मा वाली पुरुषार्थी आत्माओं को। कैसी बातें है, खतरनाक सोचा था कभी ऐसी बातों को? क्योंकि ये सब दिख रहा है, हो रहा है, पर हमें समझ नहीं रहा है। बुद्धि कंफ्यूज्ड है कि ये क्या है, कैसे इसको जज करे, निर्णय करे। इसलिए कहा क्लास नहीं सुनना है मत सुनो, एग्जाम नहीं देनी है मत दो, पर मुरली जरूर पढ़ो, चाहे धरती पर किधर भी हो, क्योंकि यही मुरली का, इसी मुरली से जो ज्ञान है, वो ज्ञान यहाँ की जो बंद खिड़कियां हैं ना, उसको कपाट उसको खोलेंगे, हमें बताएगा बाबा। क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये माया है, ये भी माया का ही रूप है। बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं के संग का क्या करो, इस संग को बड़े से बड़े दल दल समझना, जो बाहर से बहुत सुंदर दिखता है लेकिन अंदर नाश करने वाला है। ऐसी आत्माओं से कितना दूर रहोगे, दूरी बनाए रखे पर ये तुम्हारे इर्द गिर्द ही है, चारों तरफ है, पर उनको जाके बताया ना मत तुम ये हो, क्योंकि वो कहेंगे कि तुम ये हो। वो चतुर है, बुद्धिमान है, अनुभवी है और ज्ञानी है। ज्ञानी नहीं केवल महाज्ञानी है, वरदानी है, और माया का वरदान उन्हें प्राप्त है। ये सारे जो थे ना दशहरा में तीनों को जलाते हैं ना, रावण, कुंभकर्ण और वो मेघनाथ, तीनों तीनों ही वरदानी प्राप्त है, वरदान प्राप्त है तीनों को। ऐसे सैंपल नहीं है वो। महारथियों को माया महारथी से आएगी, तपस्वियों को माया तपस्वियों से आएगी, महाज्ञानी को माया महाज्ञानियों से, तीव्र पुरुषार्थियों को माया तीव्र पुरुषार्थियों से आएगी। वही तो, हे गोविंद हे गोपाल हे दीन दयाल, अंधकूप महाभयानक नानक पार उतार। इसलिए शुरुआत में कहा कि एक ही उपाय संपूर्ण समर्पण, हे प्रभु तू ही पार कर, तू ही बचा। इसलिए माया के रॉयल रूप की सावधानी, ऐसे संग से सदा सावधान और होशियार रहना। चारों ओर अटेंशन चाहिए हर समय हर सेकंड। लास्ट लाइन तो ये हो गई पहली मुरली। बीच की एक मुरली हमने छोड़ी है, वो बाद में लेंगे, लंबी है वो, इसलिए 28 की। तो पांच तत्व पांच विकार, तो ये जो अधिष्ठान का अभ्यास है वो करते रहना है, इस शरीर के निरीक्षण का अभ्यास, इस शरीर में गंदगी क्या है, और एक अभ्यास है वैराग्य लाने का, शमशान घाट में जाते हुए जाकर जलती चिताओं को देखते रहना, चाहे कोई भी मरा हो जाना जरूर, और वहां जाके क्या करना, देखते रहना। नहीं भी चिंतन किया तो भी वैराग तो आ ही जाता है थोड़ी देर के लिए, तो छोटा छोटा शमशानी वैराग जोड़ते जाना, टुकड़ा टुकड़ा वाला, वो आ गया अनुभव अंदर चला गया, वो शमशान एकदम अंदर चला जाता है, फिर भले भूल जाओ, फिर वापस जाओ, फिर बल्ब और भूल जाओ, पर वो जुड़ते जाता है। तो वो एक तो ये है सबसे पहली मुरली। दूसरी मुरली है, बाबा ने कहा है तुम कौन हो, योद्धे, तुम कौन हो मिलिट्री, तुम कौन हो एवर रेडी ग्रुप। तो एवर रेडी ग्रुप को ऑर्डर्स दिए जाएंगे, ऑर्डर हो ऑर्डर हो ऑर्डर हो ऑर्डर हो ऑर्डर हो, पांच बार। पहला ऑर्डर दृष्टि का ऑर्डर, एक सेकंड की तुम्हारी दृष्टि क्या कर दे, रूहानी दृष्टि, दिव्य दृष्टि हो जाए, देहभान से परे ले जाए, ये जो अंश मात्र भी नहीं रहे देहभान। दूसरा तुम्हारी स्मृति, तुम्हारी श्रेष्ठ स्मृति दूसरों की स्मृति को परिवर्तन कर दे। तीसरा तुम्हारी वृत्ति, ईश्वरीय वृत्ति क्या कर दे, दूसरों की वातावरण वायुमंडल को बदल दे। तुम्हारी स्थिति, दूसरों की परिस्थिति को बदल दे, ये ऑर्डर हो और हो जाए। चौथा पांचवा तुम्हारा मास्टर रचयिता स्वरूप क्या कर दे, शुभ भावना। तुम्हारा शुभ चिंतक स्वरूप क्या कर दे, आत्माओं को संतुष्ट कर दे, जो भिखारी है उनको संतुष्ट कर दे, और तुम्हारा महादानी और वरदानी स्वरूप ये भी आत्माओं को संतुष्ट कर दे। तो तुम हो क्या, मिलिट्री, और मिलिट्री को एक सेकंड में ऑर्डर मिले, एक सेकंड में कर दिखाओ,
ऑर्डर मिले, दृष्टि का ऑर्डर, सृष्टि का, दृष्टि का ऑर्डर, वृत्ति का ऑर्डर, स्मृति का ऑर्डर, स्थिति का ऑर्डर, मास्टर रचयिता का ऑर्डर, शुभचिंतक का ऑर्डर, महादानी वरदानी का ऑर्डर, तुरंत हो जाए ये काम। यह है मिलिट्री, तुम हो रूहानी योद्धे, युद्ध स्थल पर हो, तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे साथ रहना चाहिए। अगला निशानी है, पहली निशानी उनके पास माला कौन सी, विजय, सदा विजय की माला। उनके पास कवच कौन सा, सदा साक्षी और साथीपन का कवच। उनके नयन कैसे, उनका मुख कैसा, और पांचवा उनका मुख हर्षित मुख, नयन लाइट, और मस्तक, मस्तक क्या, मणि, आत्मा की मणि। ये सब उनकी चारों पांचों निशानी है, शक्तियां निरंतर साथ में रहे, साथीपन। और लास्ट में बाबा ने एक वार्निंग दी है, कौन सी वार्निंग है, वो वार्निंग कौन सी है, इसलिए बाप दादा फिर भी कुछ समय पहले वार्निंग दे रहे हैं, जिसके कि जिससे कि पीछे आने वालों को भी बाप के प्रति कोई उलाना नहीं रहेगा, इसलिए ये है वार्निंग नाउ। सेकंड सेकंड बाहर संकल्प के महत्व को जान, अपने को महान बनाओ, अर्थात नो टाइम वेस्ट, जीरो बफेलो जोन, कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। मुरली पढ़ो, मुरली लिखो, ये काम। दूसरा योग करो, राजयोग दूसरा काम। तीसरा अधिष्ठान का अभ्यास करो, आंखें बंद करके इस शरीर का स्कैनिंग, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। चौथा प्रकृति में जाओ। अगला अपनी जो ड्यूटी है, अपनी जो सेवा है, उसमें नवीनता क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचो, पर टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। या कुछ ऐसे काम करो कि जिससे दूसरों को मदद हो, एक्सरसाइज करो, शरीर को शक्तिशाली बनाओ ताकि बीमार ना पड़े, क्योंकि बीमार पड़ने के बाद यह सारा पुरुषार्थ क्या हो जाता है, जीरो। बीमार पड़ जाना संगम युग पर टाइम वेस्ट है, और तुम बीमार क्यों पड़ते हो, अपनी ही गलती से। जो बार बार बीमार पड़ते हैं बाप दादा, उन्हें ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहते, ये बाबा के महावाक्य है। जिसने शरीर को चलाना नहीं सीखा वो राज्य को क्या चलाएंगे। बॉडी मैनेजमेंट इज किंगडम मैनेजमेंट। शरीर के अंदर क्या डाले, क्या खिलाए इसको, क्या पिलाए, ये अब तक समझ में आ जाना चाहिए। वो तो और दूसरों का ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, जो लेट आते हैं, दिखाते नहीं है, वो तो और कितनी मेहनत करनी पड़ती है उनके पीछे फिर, और यहाँ आते ही रहते हैं। यहाँ आते हैं सेवाधारी माता है भाई, अपनी सारी दवाइयां बंद कर देते हैं और आधी रात में दूसरों को तोड़ाते हैं। वो भी नहीं, पहला स्टेप तो शरीर को बीमारी नहीं पड़ने देना, दूसरा अगर वो पड़ जाए तो तुरंत इलाज कराना, तीसरा रेगुलर चेकअप फॉलोअप होते रहना चाहिए। पर सबसे मेन है प्रिवेंशन, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, क्या हम शरीर में डाल रहे हैं। तो ये हो गई ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स, पांच नहीं सात, सात ऑर्डर्स। ये पांच तो दिए हुए, ऑर्डर हो, ऑर्डर हो, ऑर्डर हो, ऑर्डर हो। यहां बोल दिया है रचयिता बन, ये करो, यहां बोला चिंतक बन, ये करो, यहां बोला महादानी वरदानी बनो, आत्माओं को संतुष्ट करो, भिखारी तुम्हारे पास आएंगे, भीख नहीं मांगना है। क्या कहा, भिखारी भिखारी को क्या दे सकते हैं, सांत्वना से कुछ पेट नहीं भरता। तो ये आज का काम है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो सच्चा दशहरा अर्थात केवल पांच विकार नहीं, पांच तत्वों से आकर्षण से भी परे जाना है। तो सबसे पहली निशानी बाप समान आत्माओं की, एक सेकंड में आवाज से परे। दूसरी निशानी तूफान में शांत। तीसरी निशानी कारणों में निवारण। चौथी निशानी जो चाहे जब चाहे वो कर सके। अगली निशानी आठ के महत्व को जानने वाले। अगली निशानी हद की आकर्षण की प्राप्ति, हद के प्राप्ति की आकर्षण से परे, टच भी ना करे। ये सबसे कुछ नहीं मिलने वाला, कौन सा न्यूट्रिशन है प्रशंसा में, जो इतना पसंद करते सब खाने को चाहते, मेरी प्रशंसा हो, मेरी स्तुति हो, मेरा नाम हो, मेरा ये हो, मेरा वो, कुछ नहीं, ये सब में कुछ रखा नहीं है। निस्संग और निरासक्त हो जाना है, असंग रहना, अप्रभावित, ना ही दूसरों को प्रभावित करने की, खुश करने की कोशिश करना, ये भी एक मूर्खता है। किसी का स्तुति कर करके, स्वागत करके, उसके सम्मान में सब करना, ये भी जैसे हम किसी की टू बी इन somebody's गुड बुक्स, ट्राइंग टू बी इन somebody's गुड बुक्स, ये भी मूर्खता है, कुछ नहीं होने वाला। ये भक्त कैटेगरी है, चाहे अपना बॉस ही क्यों ना हो, फिर बॉस को खुश करना चापलूसी, हाँ खुशा में, ये सबसे कुछ नहीं होता है, व्यर्थ है, टाइम वेस्ट है। अगला पांच तत्व और रॉयल्टी वाली आत्मा नहीं बनना, रॉयल्टी पुरुषार्थी, रॉयल पुरुषार्थी आत्मा नहीं बनना, उसकी वो सारी निशानियां, माया का वरदान उनको है, माया का वरदान प्राप्त है उनका, वो आत्मघात वाला पॉइंट भी है उसमें, उनको कर्तव्य क्या है, उनके माया का वरदान कौन सा है, उनको उनका स्लोगन क्या है, उनके बोल क्या है, और उनका क्या, वो धर्मराजपुरी में भी जाएंगे, साधन चाहिए, दूसरों को भयभीत करते हैं माया का, ये सारी चीज़ें उन आत्माओं की। ये थी पहली मुरली, और दूसरी मुरली में बाबा की वार्निंग, एक सेकंड भी वेस्ट ना हो, महान बनाओ खुद को, और ये ऑर्डर्स हो तो इसकी प्रैक्टिस करो। निशानियाँ क्या क्या, तुम्हारा वो बैच तो अलग ही है, पर यहाँ कौन सा बैच है, यहाँ कौन सा है, सदा विजयी ये माला, और दूसरा कवच कौन सा, साक्षीपन और साथीपन का, और उसके बाद में मुख हर्षित, उसके बाद में नैन रूहारी लाइट और माइट, और मस्तक में मणि। तो ये सारी चीजें हैं। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल लाल प्राणनाथ। इसलिए अल्टीमेट क्या चाहिए, पर समर्पण, कि बाबा तू ही पार कर, अंधकूप महाबयान नानक पार उतार, हे गोविंद हे गोपाल। ओम शांति।
Hey, Gopal. समरथ अगम पूरन, हे समरथ अगम।